सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
ओम शांति। हम सभी ने इस सीजन में बाबा से खूब खजाने लूटे हैं। सभी बाबा के बच्चों को इतना अच्छा पूरे वर्ष के लिए होमवर्क मिला है। बाबा की मुरलियां एक एक पढ़ो, अंदर जाकर के उसकी गहराई को देखो। बाबा हम सभी को बाप रूप से भी और शिक्षक के रूप से कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो अभी समय है बाबा की सीजन में, इस साल 11 मुरलियां हम सबने सुनी और उन्हीं 11 मुरलियों के निचोड़ को, इसेंस को हम सभी अपने जीवन में उतार लें। बाबा हम सबको किस रूप में देखना चाहते हैं, बाबा की चाहनाएं क्या क्या हैं, अगर हम सभी अपने पास नोट करते हैं और जो कुछ बाबा चाहता है वो हम कर लेते हैं, तो बाबा की दुआएं भी हम सबको साथ साथ मिल जाती हैं। इस बार मधुबन से सभी स्थानों पर बाबा की मुरलियों का चार्ट भेजा जा रहा है। मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने में कई बाबा की मुरलियों का सार चेकिंग के रूप में और चार्ट के रूप में सारे सेंटर्स पर भेज रहे हैं। इस बार भी बाबा ने अभी 5-6 महीने का जो होमवर्क दिया है, जो बाबा ने कहा जब बच्चे करेंगे तो बाबा अगली सीजन में आएगा। इतने समय से बाबा हम सबको विशेष प्रेरणाएं और इशारे देता रहता है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बाबा भी देखना चाहते हैं। तो बाबा की मुरलियां, बाबा का इतना अच्छा खजाना, मैं समझता हूँ आप सभी ने मुरलियां तो सबको मिली, सबको मिल गई, सेवाधारियों को भी मिली, बहनों को भी, टीचर्स को भी, लेकिन उस पर कितना किसने विशेष ध्यान दिया है, कितना उसको अपना बनाया है, वो नंबर वार है। अभी से फिर समय मिलेगा, इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज किया जाए और प्राप्तियां अगर इतनी हुई हैं, इतना ईश्वरीय अविनाशी खजाना हम सबको मिला है, तो चलन और चेहरे से वो प्राप्तियों की झलक दिखाई देनी चाहिए। तो मैं आज यही सोच रहा था कि जिसके पास बहुत प्राप्तियां होती हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी। जैसे बाबा ने भी लास्ट मुरली में कहा कि अगर ज्ञान की सब्जेक्ट में पास हो, ज्ञान है हमारे पास, तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होना चाहिए। नॉलेज फुल है तो नॉलेज फुल आत्माएं कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकती जो श्रीमत के विरुद्ध हो। ज्ञान का खजाना है हमारे पास, तो क्या ज्ञानवान हो करके हर कर्म हर संकल्प हर बोल चलता है होता है। और अगर योग की शक्ति है, योग का खजाना है, योग बल हमारे पास जमा है, तो उसकी निशानी है कि हर शक्ति आर्डर प्रमाण कार्य करती है। अगर योग में लगा रहा हूँ, आज मेरी यही एक चर्चा चल रही थी, मधुबन में योग की भट्टियां रखी जाएं, किनको बुलाया जाए, क्या योग में रुचि रखने वालों को बुलाया जाए, योग भट्टी कराने वालों को बुलाया जाए, किनको बुलाएं, या योग के प्रयोग करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्माएं जो बन गई हैं, जिनके संकल्प भी सिद्ध होने लगते हैं, जिनकी एक एक कर्मेंद्री मन बुद्धि कहना मानती, आर्डर प्रमाण चलती है, ऐसी प्रयोगी आत्माएं जिनको बाबा कहता है ये मेरे योगी बच्चे हैं, योग की सिद्धियां यथार्थ स्वरूप में दिखाई देती हैं, वो सिद्धियां नहीं जो लौकिक दुनिया वालों के पास हैं। लेकिन अगर हमारा बाबा के साथ संबंध है, कनेक्शन है, कल आपको एक बाबा का छोटा सा संदेश क्लास में सुनाया जाएगा, जब मुझे मिला था टाइप करने को तुमने कहा इसको दादी जनरल रूप बनाया जाए, क्योंकि वो पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए आया था, तो दादी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो है सबके लिए, सभी ब्राह्मणों के लिए है और सभी सेंटर्स पर भेजना चाहिए। तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए कल सुनेंगे आप सभी, मैं अभी ही रिवाइज कर देता हूँ। बाबा ने उसमें एक बात कही है कि अगर कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात आप बच्चों के सामने आती है, उसका हल आपके पास ही है, दूसरे के पास नहीं है, और उसका हल प्राप्त करने का साधन ये है आप अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर स्थित होकर के बाबा के दिल तख्त नसीन बन करके फिर कोई बात सोचो, ठीक उत्तर मिल जाएगा, परिस्थिति का हल प्राप्त हो जाएगा, कोई समस्या आएगी उसका उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले अपनी ऊंची सीट पर स्थित हो जाओ। कोई भी बात, कोई भी ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए जो हिलाने वाली हो, स्वयं की स्थिति को, सेवाओं को, या कोई भी प्रकार से लगे कि माया का विकराल रूप है, पेपर है, पेपर का रूप है, समाधान चाहिए, इसका उत्तर चाहिए, तो बाबा उसकी युक्ति बताते हैं कि बच्चे पहले अपनी ऊंची सीट पर स्थित हो जाओ, ऊंचे समान में स्थित हो जाओ, तो ये बुद्धि ठीक काम करेगी और बाबा उस बुद्धि को टच करेगा। हलचल में आ गए, नीचे आ गए, तो बाबा की टचिंग आ भी रही होगी तो आप कैच नहीं कर पाओगे। कई आत्माएं संगठन में चलते चलते विघ्न रूप बनती हैं, कोई जानबूझ के बनती हैं और कोई अपने संस्कारों की परवश होकर के बन जाती हैं। अगर कोई आत्माएं ऐसी विघ्न रूप बनती हैं, सहयोगी संगठन में उनको बना के चलना भी पड़ता है, लेकिन बार बार डिस्टर्ब करती हैं सेवाओं को, तो भी बाबा कहते हैं उनकी पास्ट की बातों का चिंतन न करके उनको शुभ भावना का सहयोग दो। ऐसी शुभ भावना से संपन्न हो आत्मा, उसकी कमी कमजोरियां, उसकी पास्ट जीवन अगर आपके ध्यान पर रहेगी तो उसके प्रति नफरत रहेगी, घृणा रहेगी, उससे किनारा करेंगे, लेकिन पास्ट उसको वाइब्रेशन हमारे से ना आए। कई बार हम सबको अपने साथियों की, अपने भाई बहनों की जो साथ रहते हैं, सेवा साथी हैं, उनकी बातों का पता चलता है, ये इसने ऐसा किया है, इसके अंदर ये संस्कार है, इसने श्रीमत का, इस आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो उससे थोड़ा सा अंदर से नफरत होती है, घृणा होती है, किनारा करके हम रहना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको भी सहारा दो, उनके लिए भी शुभ भावनाएं रखो, शुभ चिंतन से भरपूर बनो, उनको अच्छा संग दे करके उनके संस्कारों को परिवर्तित करो, उनके अंदर परिवर्तन का एक उमंग आ जाए। लेकिन इतनी हमारे अंदर से शुभ भावनाएं हों, इतनी हमारी अच्छी ऊंची स्थिति हो जो हम उन आत्माओं को मदद कर सके। इस साल के लिए यही विशेष होमवर्क बाबा ने दिया है कि अभी वाचा सेवा के साथ साथ मनसा की शक्तियों का प्रयोग करो, और वो शक्तिशाली मनसा तभी बन सकती है जब आत्मा बहुत अंदर से प्रसन्न चित है, शुभ भावनाओं से भरपूर है, संपन्न है। तो सभी चेक करना कि हमारी प्रसन्नता किन किन बातों से कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। जब कितनी सब प्राप्तियां हुई हैं, संगम युग पर हम सबको बाबा सब प्रकार से भरपूर बना रहा है, और जिसके पास सब प्राप्तियां हों, ज्ञान गुण शक्तियां सब खजाने हों, स्थूल सूक्ष्म कोई भी प्रकार की अप्राप्ति न हो, फिर भी अगर प्रसन्नता नहीं तो उसका कारण क्या? जब बाबा ने सब खजाने अपने बच्चों के लिए रख दिए, दे दिए, सब भंडारे हमारे भरपूर कर दिए, सब मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, जिन्होंने यज्ञ की अच्छी प्यार से दिल से सेवाएं की, जो बाबा के सेवाओं में सहयोगी बने, उनकी हर मनोकामनाएं बाबा ने पूरी की, और हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होते भी अगर प्रसन्नता नहीं तो कारण क्या? अगर इस पर थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो कई कारण स्पष्ट दिखाई देते हैं जो आत्मा अंदर से संतुष्ट नहीं रहती। जबकि सबसे बड़ा धन संतोष धन है, संतुष्टता का धन सबसे बड़ा धन है, और वो संतुष्टता हम सब बच्चों को बाबा ने कहा जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। जैसे आज बाबा ने कहा बाबा जो है जैसा है उसको अगर पहचान लो, तुम बच्चे पहचान लो तो तुम्हारे अंदर कितना नशा रहेगा, और दुनिया पहचान ले तो क्या होगा। हम अगर अपनी विशेषताओं को जान लें तो हम कभी दिल से कष्ट नहीं हो सकते। लेकिन आत्मा चलते चलते कोई पास्ट, कुछ ऐसे संस्कार, कोई स्वभाव, कोई हिसाब किताब, अगर कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई, तो उसके बाद कभी भी उसके संकल्प में, स्मृति में वो बात आती है तो उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भले वो बताए नहीं किसी को, लेकिन बार बार उसका दिल खाता है, मन खाता है, मैंने ये कर लिया, मेरे से हो गया, होना नहीं चाहिए। दूसरों को देखता है, दूसरों से भेंट करता है, उसके भाग्य को देखता है, इसका कितना ऊंचा भाग्य, मेरे से ऐसा हो गया, मेरा ऐसा संस्कार। अगर आत्मा बार बार निराश होती है, उदास होती है, अपनी कमी और कमजोरियों को, अपने हिसाब किताब को फुल स्टॉप लगाना नहीं आता, मान लो कुछ हो भी गया तो क्या हम उसको बीती को बिंदी लगा सकते हैं, या उसका बार बार चिंतन चलता है मेरे से क्यों हुआ, मेरे से नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर तो कोई विशेषता नहीं, मैं अब क्या करूं, ऐसे ऐसे संकल्प ले करके आत्मा एकदम हताश, निराश, उदास। इतनी सब प्राप्तियां हो रही, एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से हमारी खुशी, हमारी उमंग, हमारी उत्साह कहां जा रही, बह रही है, लीकेज। इस लीकेज को सूक्ष्म बंद करना है कि अगर कुछ हो भी गया, कोई हिसाब किताब था भी, किसी के साथ भी था, पूरा हो गया, अब फिर से ना आए उसके लिए अटेंशन, उसके लिए अलर्ट, उसके लिए सावधान। लेकिन जो हो गया उसका बार बार चिंतन करके अपनी खुशी को नष्ट करना, अपने संगम के भाग्य को गंवा देना, इतनी ऊंची मौजों की जीवन का सुख न ले पाना, ये कौन सी समझदारी है। तो जब मैं कभी ऐसी किसी की बात सुनता हूँ, कोई ऐसा कहता है कि मुझे बार बार संकल्प आते हैं कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मेरा ऐसा रिकॉर्ड हो गया, खराब हो गया, लेकिन एक बार हो गया तो बाबा कहता फिर से उसको स्मृति में ला करके अपने आप को परेशान और दुखी क्यों कर रहे हो। दूसरी आत्माओं को भी हमारे वाइब्रेशन तब आते हैं जब हमारा अंदर मन खाता है, उनके अंदर चलाने के निमित्त भी कौन बनता है, खुद ही बन जाते हैं। वो भुला सकते हैं लेकिन हम उनको स्मृति दिला देते हैं कि मैं कमजोर हूं, अपने कमजोर संकल्प चिंतन में ला करके, अपनी कमजोरियों को ध्यान में ला करके। इसलिए अगर हम प्रसन्न चित्त रहना चाहते हैं, क्योंकि योग का आधार, इस ब्राह्मण जीवन की खुशी का और उमंग का आधार प्रसन्न चित्त स्थिति है, और प्रसन्नता का आधार सर्व प्राप्तियां हैं। जो कुछ बाबा ने दिया है उसका चिंतन करो, उसका सुमिरन करो, कितना बाबा ने हम बच्चों को दिया है। कौन ऐसा बाप होगा जो एक एक बात, एक एक प्रकार से हर संकल्प तक की शिक्षा और सावधानी दे, टीचर के रूप में इतना प्यार से पढ़ाए, श्रीमत सतगुरु के रूप से दे, बाप रूप से हम बच्चों की इतनी पालना करे, बच्चे बच्चे कह करके, मीठा मीठा कह करके मीठा बना दे, ऐसी ऊंची श्रेष्ठ पालना, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा भाग्य, इतनी ऊंची श्रीमत मिलते हुए भी यदि आत्मा में प्रसन्नता नहीं, यदि वो खुशी नहीं, यदि उमंग नहीं, तो क्या कारण है? तो एक कारण तो ये दिखाई देता है कि हम अपनी पास्ट की बातों का कभी कभी चिंतन कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो हमारी वो खुशी, वो जीवन का नशा गुम हो जाता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी माया है इस समय, और वो प्रैक्टिकल की है, कि दूसरों के भाग्य से हम भेंट करने लगते हैं, या ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि इसको इतना भाग्य है, इसको इतने चांस मिलते हैं, इसको हर बात में आगे रखा जाता है, मेरे को क्यों नहीं, मैं तो इससे अच्छा योग्य हूँ, मेरे अंदर तो अच्छी योग्यताएं हैं। लेकिन अगर योग्यताएं हैं तो क्या मैं उन योग्यताओं का सहज सरल प्रयोग करना जानता हूँ, या मैं दूसरों से रेस करता हूँ, रीस करता हूँ, भेंट करता हूँ। ईर्ष्या हमेशा, ईर्ष्यालु आत्माएं कभी भी, सब प्राप्तियां होते हुए भी, चाहे उनको सब खजाने दे दिए जाएं, सब खजानों की चाबी दे दी जाए, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दूसरों से भेंट करता है। हमको जो मिला है, हमारे पास जो बाबा ने हमको दिया है, अगर हम अपने भाग्य से भेंट करते हैं, क्या क्या बाबा ने हम बच्चों को दिया है, प्राप्तियां कराई हैं, उसके नशे और खुशी में रहते हैं, जितना हमें मिला है, इसको इतना मिला है, मेरे पास नहीं। तो एक बार एक दादी क्लास करा रही थी, बोला एक है बचपन की ईर्ष्या, एक है जवानी की ईर्ष्या। बचपन की ईर्ष्या लो, बच्चे जो होते हैं, एक के पास अच्छा खिलौना होता, दूसरे के पास नहीं होता तो रोने लगता है, इसके पास इतना अच्छा है, छोटी छोटी चीजों के पीछे ईर्ष्या एक दूसरे बच्चों में होती है। बड़े हो जाते हैं तो ये आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे रह गया, इसका बहुत ऊंचा भाग, इसको बहुत चांस मिलता है, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी इसके इतने स्टूडेंट हैं, इसके इतने सेंटर हैं, इसकी इतनी एरिया है, इसको इतने चांस है, मेरे को नहीं है, खुशी गायब, प्रसन्न रह ही नहीं सकता। इतना जो बाबा दे रहा है, हम दूसरों से भेंट कर रहे हैं, हमको जितनी चीजें मिली हैं, जितनी प्राप्तियां हुई हैं, क्या मैं उनकी यथार्थ पालना करके उनको इतना योग्य बना दूं, इतना सपूत बना दूं, जो बाबा के वारिस क्वालिटी के बच्चे निकल आए? क्यों क्वांटिटी के पीछे, क्यों एरिया के पीछे, क्यों स्थान के पीछे हम अपने समय और शक्तियों को नष्ट करते हैं, हम अपनी खुशी को गायब करते हैं। एक बहुत बेहद की भावना अगर अंदर से इमर्ज होती है कि जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है उसको मैं सफल करूं, उसको मैं इतना योग्य बना दूं, उस एरिया के ऐसी अच्छी सेवा कर दूं जो वहां से अच्छे अच्छे फूल निकल आए, अच्छी क्वालिटी तैयार हो जाए, उनकी ऐसी अच्छी पालना कर दूं, क्यों किसी से भेंट करूं, क्यों किसी से रीस करूं? क्या क्या प्रकार की माया है इस समय कि ये इतना धन से सहयोग दे सकते हैं क्योंकि इनके पास अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं भी क्यों न करूं? भावना बड़ी अच्छी है, यज्ञ में करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन सहयोग देने की विधि यदि यथार्थ नहीं है तो बाबा कहता है उनका जमा का खाता नील है, माइनस। इसलिए अगर इतनी सेवाओं के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों का खाता जितना कर रहे हैं उसके अनुकूल इतना भरपूर होना चाहिए। इस बार तो एक मुरली बाबा ने कह दिया कि बच्चों का खाता केवल 5% रह गया, 95% खाता खाली है। ध्यान देते होगे बाबा की मुरलियों में कि इतनी सेवाएं कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मान सान के पीछे, लेन देन के पीछे, पैसे के पीछे अगर स्थिति नहीं है, सेवा के पीछे हमारी स्वस्थिति बिगड़ रही है, हमारे चिंतन श्रेष्ठ नहीं है, हमारी भावनाओं में वो है कि इसके पास है, हमारे को मिले, भेंट कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारा खाता नील है। हम अपने खाते को चेक करें, चारों सब्जेक्ट को लेकर के देखें, जैसे ज्ञान और योग की बात बताई, ऐसे धारणा हमारे जीवन में दिखाई दे जिसको बाबा कहता कर्म से वो गुण दिखाई देने लगे। इस बार तो बाबा ने दो गुणों पर ध्यान खिंचवाया कि कर्म में मधुरता और सरलता दिखाई दे। अगर धारणा स्वरूप आत्मा है तो कहाँ तक मधुरता उसके जीवन में आई, कहाँ तक सरलता आई है। अभी तक भी कई आत्माएं सेवाएं बहुत अच्छी करती हैं लेकिन पालना की विधि ठीक नहीं। एक बार एक ग्रुप बाबा के सामने में रहा था, बोला वृद्धि तो बहुत अच्छी की है लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं की है। वृद्धि कर लो और विधि ठीक न हो, धारणाएं ठीक न हो, इसलिए इस बार भी हमारी मीटिंग में बार बार ये बात चल रही थी कि संख्या इतनी बढ़ जाती है, क्वालिटी वाली आत्माएं नहीं आती। पैसे के कारण कोई ने 500 रुपया 1000 रुपया बहनों को दे दिया और वो सेंटर से लेकर के उनको यहाँ आ गई, न उनकी धारणाएं हैं, न उनका कुछ पता है, न मर्यादाओं का मन मालूम है, न यहाँ यज्ञ की व्यवस्थाओं का मालूम है। उनके वाइब्रेशन से लगता है, इतनी चोरियां होती हैं, इतनी चीजें चली जाती हैं, जेब कट जाती हैं, लोग उल्टा करके करते हैं। लेकिन अगर उन पर ध्यान दिया जाए कि जो आत्माएं बाबा के घर में जाएं, वो बहुत क्वालिटी वाली हों, बहुत अच्छी धारणाएं वाली हों, क्या जरूरत है उनको हम धन से कहें तुम इतना सहयोग दो तो चलो। एक नहीं देता है तो दूसरा उनको तैयार कर लेता है, एक कहेगा हम इनको मर्यादाओं में बांधते हैं तो दूसरा उनको बिना मर्यादाओं के कहता है चलो चलो कोई नहीं आजकल सब चलता है, बोझ किस पर। इसलिए बहुत कर्म की सूक्ष्म फिलॉसफी है जो हमारी आंतरिक खुशी को नष्ट कर देती है। ये श्रीमत की छोटी छोटी अवज्ञाएं अगर हमसे हो रही है तो आंतरिक खुशी का अनुभव हम नहीं कर सकते, और अगर आंतरिक खुशी का अनुभव नहीं है तो योग ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत प्रसन्नता चाहिए, बहुत अंदर की आंतरिक खुशी चाहिए जो बाबा से हम मिलन मना सके, शक्ति ले सके। यथार्थ योग हमारा हो, संकल्प हमारे सिद्ध होने लगे हो, तब होगा जब आंतरिक आत्मा इतनी पुण्य कर्म करके खुशनुमा रहती है। इसलिए बहुत ध्यान है हमारी कर्म फिलॉसफी पर, बाबा बार बार हमारा ध्यान खिंचवाता है। इसलिए इस बार कह दिया जब सतगुरु बनेगा तो माफ नहीं करेगा, समय आ रहा है, टीचर के रूप में चलो होमवर्क दे रहा है, लेकिन सतगुरु का पाठ शुरू उसके पहले हम सभी बाबा की यथार्थ श्रीमत क्या है। रीस करने की बजाय हम रेस जरूर करें, आगे बढ़ें, बाबा के कार्य की वृद्धि करें, सेवाओं को बढ़ाएं, लेकिन सेवाओं में अगर स्वस्थिति ठीक नहीं रहती, अगर हमारी मानसिक प्रसन्नता कहीं पर भी नष्ट होती है किसी भी कारण से, तो वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा माना खुशनुमा जीवन, सेवा माना खुशी देना और खुशी लेना, सेवा माना दुआएं देना दुआएं लेना। लेकिन अगर हम सेवा कर रहे हैं और खुश नहीं रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते, तो सेवा किस खाते में जाएगी। इसलिए चारों सब्जेक्ट को ध्यान पर दो। संबंध संपर्क में भी बाबा ने कहा इतना हल्कापन, इतनी दुआएं एक दूसरे के साथ, ऐसे नहीं हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की कमियां कमजोरियां नोट करते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने हम सबको बताई हैं, अगर हम सबका जमा का खाता फुल है तो हम इसको चेक करें, रोज चेक करें एक बार कि अगर मेरे पास चारों सब्जेक्ट ठीक ठीक हैं, अच्छी तरह इस पर हमारा ध्यान है, तो क्या हर कर्म मेरा योग युक्त युक्ति युक्त हो रहा है, हर शक्ति मेरा कहना मानती है, आर्डर प्रमाण संकल्प चलते हैं, मन पर हमारा कंट्रोल रहता है, विचारों पर हमारा कंट्रोल है, या जो आया सोच लिया, जैसा आया सोच लिया, नेगेटिव विचारों की इतनी अधिक कभी कभी प्रबलता हो जाती है जो तनाव पैदा कर देती है, मुझा देती है, इंसान को खुशी गुम कर देती है। और अगर बाबा के बच्चों को देख करके कोई डॉक्टर कहते हैं तुम टेंशन में हो, तुम दबाव में हो, तो सेवा हुई या डिसर्विस हो गई। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर हम सभी के टेंशन को दूर करने वाले, हम सबके डिप्रेशन को समाप्त करने वाले हमारा इतना ऊंचा बाबा, इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची धारणाएं, और मुझे कोई सर्टिफिकेट दे डिप्रेशन में है, तो मैं समझता हूँ बाबा कहता बच्चे अपने चलन से, अपने चेहरे से, अपने व्यवहार से बाबा का नाम बाला करो, लेकिन मैं बाबा को बदनाम कर रहा हूं यदि मेरे अंदर वो धारणाएं नहीं है। बाबा अब हम सबको इतना कहता बच्चे तुम्हारे एक एक बोल निर्मल होने चाहिए, निर्मल स्वभाव होना चाहिए, लेकिन कई कई स्थानों से ऐसे ऐसे पत्र आते हैं, कभी कभी सुन करके ऐसा लगता है ये हमारी बहनें इतनी ऊंची ऊंची बातें करती, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस कराती, और ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे क्यों होता है, ऐसे सेंटर्स पर क्यों चलता, प्रश्न उठता है। जब बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची शिक्षाएं हम बाबा की तरफ से दे रहे हैं लोगों को, तो पहले तो मैं कहता हूं मेरे कान सुनते हैं जो दूसरों को सुनाता हूं, जो दूसरों को कहता हूं मेरे कान सुनते हैं। इसलिए अगर कोई निमित्त आत्माएं, कोई भी बाबा का बच्चा जो निमित्त है सेवा के, अगर उसकी वाणी निर्मल नहीं है, कटु है, किसी को भी दुख देने वाली है, तो सेवा क्या करेगा। इतनी ऊंची शिक्षाएं बाबा की जो मिल रही हैं, हम सबका व्यवहारिक जीवन कैसा है ये बहुत महीनता से चेक करना है, क्योंकि बिना व्यवहार से हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। व्यवहार हमारे हर बोल कर्म में दिखाई देना चाहिए कि कितना श्रेष्ठ है, कितना शुद्ध है, कितना सुखदायी है, कितना मीठा है। अगर सुखदायी नहीं है, किसी भी आत्मा को आंतरिक दुख हम दे रहे हैं, वो ले रही है ठीक है, लेकिन हम दे रहे हैं अगर, तो बाबा कहते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए दुख देना, दुख लेना, या कटु वचन बोल करके किसी ऊंची स्थिति को नीचे ले आना, आज मैं एक टॉपिक तैयार कर रहा था, बाबा ने उसमें हिंसा की परिभाषा सुनाई है, हिंसा किसको कहा जाता है और अहिंसा किसको कहा जाता है। यदि मेरी कोई भी चलन से कोई आत्मा की स्थिति नीचे आ जाती है, या मेरा विवेक जो कहता है उसको मैं दबा करके दूसरा कुछ कर रहा हूं, तो ये अपने आप को दबाना माना, अपने विवेक को दबाना माना खून करना, ये बहुत बड़ी हिंसा है। ऐसे ऐसे बाबा के जो महावाक्य हैं, कई बार अगर उन पर गहराई से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो कितनी बार हम अपने विवेक को दबाते हैं, नहीं करना चाहिए कर लेते, नहीं बोलना चाहिए बोल देते, या बोलने के बाद पश्चाताप करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है, ये भी एक प्रकार का दुख देना है। और बाबा ने होमवर्क इस बार दिया है कि न दुख दो न दुख लो, अगर कोई दे तो तुम लेना नहीं। तो ऐसी ऐसी जो बाबा की मधुर शिक्षाएं हम सबको मिली हैं, एक चार्ट बना करके एक अच्छी तरह से, बाबा ने जो कहा है वो मैं करूं, जो बाबा की चाहना है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, एक अंदर से दिल से संकल्प आना चाहिए, और जब हमारे दिल में आ जाएगा तो कोई हमको रोक नहीं सकता है, कोई नहीं कह सकता मैं क्या करूं इसके कारण ऐसा हो गया। तो मैं प्रसन्न चित्त स्थिति में अगर रहना चाहता हूं, तो जो कुछ बाबा ने प्राप्तियां कराई हैं उनका मैं चिंतन करूं, उनका मनन करूं, और उस नशे में रहूं कि बाबा आपने जो मुझे दिया है वो बहुत कुछ दिया है, और जो विशेषताएं हैं, बाबा का कोई ऐसा बच्चा नहीं, चाहे वो 9 लाख के अंदर वाली माला वाला क्यों न हो, उसके अंदर कोई विशेषता न हो, ऐसा है कोई? और जब सबके अंदर कोई ना कोई विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को काम में लगा दो, बीज को धरणी में डालो तो फलीभूत हो जाएगी, ऐसे नहीं बीज फलीभूत होगा, रखा रहेगा, हवा पानी में कभी सड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको धरणी में डाल दिया जाए, देखभाल ठीक की जाए, तो बीज से अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो जो विशेषताएं हैं, अपनी विशेषताओं को देख करके, हर एक के अंदर विशेषता है, कोई के अंदर हिम्मत की है, कोई के अंदर उमंग उत्साह की है, कोई के अंदर निश्चय की है, कोई के अंदर सेवा करने की है, कोई के अंदर दूसरों को आगे बढ़ाने की है, बहुत सी विशेषताएं अगर उसकी लिस्ट निकाली जाए, तो हम सभी में जो विशेषताएं हैं उनको सेवा में लगा करके एक का कई गुना हम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब विशेषताएं काम में लगती हैं तो आत्मा कभी निराश नहीं हो सकती, कभी दिल से कष्ट नहीं हो सकती, कभी उसका उमंग खत्म नहीं हो सकता। तो प्रसन्न चित्त रहने के लिए संतुष्ट रहना जरूरी है, और संतुष्ट रहने के लिए प्राप्तियों की स्मृति जरूरी है। बहुत कुछ बाबा ने दिया है सिर्फ चिंतन को, कितने खजाने भरपूर किए हैं बाबा की एक एक मुरली पढ़ो सुनो, ऐसे लगता है क्या बाबा हमको कितना ऊंचा उठा रहा है, कितना ऊंचा सिखा रहा है। तो इतने ऊंचे सम्मान जो बाबा ने इस बार दिए हैं, मैं कहता हूँ इसी सीजन के सम्मानों की एक लिस्ट बना लो। तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य हो, तुम वृक्ष के तना हो, तुम फाउंडेशन हो, कितने सारे सम्मान दिए। अगर उस स्वरूप में स्मृति में हम सभी थोड़ा समय भी रहें, तो उस सम्मान के आगे ना अभिमान आएगा ना देसी कश्ती आएगी। अभिमान भी नहीं है, बाबा ने बनाया है। अगर मैंने कुछ किया भी है तो बाबा करा रहा है, मैंने क्या किया। कर भी रहा हूं, अगर मेरे से कुछ अच्छा हो भी रहा है तो कराने वाला बाबा पीछे है। ना अभिमान आएगा ना कभी भी ऐसा होगा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाबा करा रहा मेरे द्वारा। ठीक है, तो सभी ऐसे उमंग उत्साह में रह करके बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसको करते चलो, और बहुत प्रसन्नता का अनुभव करो। इस जीवन में संगम युग पर अगर ब्राह्मण आत्माएं प्रसन्न चित नहीं रह सकते तो और कौन रहेगा। लेकिन प्रसन्न चित नहीं रहते हैं तो कारण क्या है उनको चेक करना है। कोई न कोई ऐसे प्रश्न अंदर है, अपने प्रति है या साथियों के प्रति है या अन्य आत्माओं के प्रति। कोई यज्ञ के कारोबार को देख करके भी बहुत प्रश्न करने लगते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, क्यों क्यों करके अपनी प्रसन्नता को नष्ट कर देते हैं। कुछ भी हो मुझ आत्मा को प्रश्न चित नहीं बनना है, प्रश्न नहीं आने चाहिए, टेढ़ा मार्ग। प्रसन्न चित्त स्थिति, फुल स्टॉप की स्थिति प्रसन्न चित बना देगी। जब बाबा कहता बच्चे तुम त्रिकालदशी स्थिति में स्थित हो जाओ, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, तुम त्रिकालदशी स्थिति में हो जाओ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है और जो होगा और अच्छे से अच्छा होगा, तो फिर चिंता क्यों, गम क्यों, दुख क्यों। वो बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अपने आप अनुभव होने लगेगा। तो हम बाबा की बताई हुई जो भी मर्यादाएं, जो भी श्रीमत है, जिस सम्मान से नशा चाहता है बाबा हम सबको, हम बाबा की मुरलियों को चेक करें, गहराई में जाएं और बाबा की मुरलियों के आधार से अपनी ऊंची स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति।
प्यारे प्रभु से मना।